आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
NDIS प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते ही होंगे। ऑस्ट्रेलिया में विकलांग लोगों के लिए उचित आवास की गंभीर कमी है और इसी मुद्दे से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार की तरफ से निवेशकों को प्रोत्साहन दिए जाते हैं। तो ये NDIS प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट क्या है, इसको समझने के लिए आज बात की है रियल एस्टेट से जुड़े हुए वामसी रमन्ना के साथ में, और वो बताते हैं।
अनिता जी, ये NDIS स्कीम जो है 2013 में एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस किया है और ऑन ए फ्री रन, आई मीन इट्स ए ट्रायल रन बेसिकली। तीन चार साल उन्हें ट्राई किया था और सक्सेसफुल हो रहा था। दैट्स व्हेन 2016 जुलाई में दे हैव स्टार्टेड दिस NDIS हाउसिंग प्रोग्राम। एंड इसमें क्या होता है, द मेन पर्पस ऑफ द NDIS हाउसिंग इज बेसिकली टू अकोमोडेट the people who are mentally disabled, physically disabled, and at the same time any other disabilities where people need some caring. Now, abhi aap dekha jaye to it's like there are many care houses where in the same house up to 20-30 people are living. So in this, what happens is like the standard of the living jo log reh rahe udhar, ऑब्वियसली जितना ज्यादा लोग रहेंगे उसमें उतना केयरिंग का चांसेस कम हो गया केयरर के लिए। तो इनका लाइफ स्टैंडर्ड्स बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेकर आया है। और इसके साथ साथ इसमें दूसरा बेनिफिट एक होता है कि जैसा हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं लोग, तो हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं, दे वंस द ट्रीटमेंट इज कम्प्लीटेड द पेशेंट डजंट हैव टू बी इन द हॉस्पिटल फॉर अ लॉन्गर रन। तो एक बार ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद what they are doing is they are moving these patients to these nearby NDIS houses where they will be taken care of there, and if any immediate requirements have occur they are moving them to the hospital. Isme kya ho raha hai, the hospital mein jo nurses aur doctors mein jo burden pad raha hai wo kam ho jayega taki they can serve more patients in the hospitals.
Ji
to
ji
the cost incurred for a patient to be looked after in a hospital काफी ज्यादा है when you compare to a cost incurred for a patient to be looked after in an NDIS house.
जी, तो NDIS properties को एक तो वो लोग ले सकते हैं जिनकी अपनी डिमांड है, और दूसरा जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी करते हैं, तो एक तरह से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है उनके लिए। तो गारंटी क्या रहती है कि आपको टेनेंट मिलेंगे ही इन घरों में?
इसमें गारंटी ऐसा कुछ नहीं दे सकते अनिता जी, क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसा पार्टिसिपेंट्स आते हैं आपको वेरी शॉर्ट स्टे, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल बता रहा था जिसमें हॉस्पिटलाइज हुआ पेशेंट को, मे बी ही नीड्स अ केयरिंग फॉर वन मंथ। तो अगर आपका घर हॉस्पिटल के पास में है, यू हैव द एक्सेस टू मूव द पार्टिसिपेंट और द पेशेंट टू द नियर बाई हाउस। सो एक बार उनका इलाज खत्म हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली दे डोंट नीड फर्दर असिस्टेंस देयर। तो इट कैन बी अ शॉर्ट टर्म स्टे एज वेल, बट इसमें आपको मैं मल्टीपल कैटेगरीज है जी। एक होते हैं रोबस्ट कैटेगरी एज एन इन्वेस्टर, जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर के मुताबिक देख लीजिए। तो किसमें इन्वेस्ट करना है, कौन सा कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज रहते है जिसमें इन्वेस्टर का रिटर्न फर्क पड़ेगा।
जी बिल्कुल,
ठीक है जी। तो जैसा आप रोबस्ट लेके जाइए और हाई फिजिकल सपोर्ट लेके जाइए एंड इम्प्रूव्ड लिवेबिलिटी, and these are different categories in the NDIS housing. So jisme robust mein aapko aate hai, it's like mentally disabled you know participants in the house basically, or high physical support mein it's like you need to have a specific requirements like hoist facility in the bedrooms just in case if in agar aapko patient ko uthana hai to they use the hoist on the top from moving to the stretcher to the bed or bed to the stretcher. So there are different specifications needed in the house based on the requirement, based on the category of the property that you are investing.
अच्छा,
ठीक है। As an investor, आपका funding जो property का investment construction cost, ये category के हिसाब से फर्क पड़ेगा।
अब
हाँ जी
जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो ग्रोथ को तो सोचते ही हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का अर्थ
बिल्कुल
ही यही है। तो इसमें ग्रोथ की क्या पोजीशन है एनडीआईएस प्रॉपर्टीज की? क्या पक्का रहता है कि ग्रोथ होएगी और रिलायबल है?
ये ग्रोथ के मुताबिक में बता जाए तो इसमें ग्रोथ इज नथिंग बट द 10 ऑक्यूपेंसी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द हाउस, ठीक है जी। तो यूजुअली बिफोर जुलाई 2023 इसका फंडिंग जो था, आई मीन यूजुअली हमारे कस्टमर जो आएंगे तो लेंडर के पास जाएंगे तो यूजुअली एक वैल्यूशन रिपोर्ट आते हैं उसमें, तो वैल्यूशन में प्रोजेक्टेड इनकम जो आते हैं वो आता था पहले हमको अराउंड 100K थे, 110,000 तक, बट जुलाई 2023 के बाद जो भी वैल्यूशन आ रहे हैं, जो कंस्ट्रक्ट नया प्रॉपर्टीज बन रहे हैं, उनका प्रॉपर्टी का प्रोजेक्टेड इनकम ऑन द वैल्यूशन आ रहा है कम से कम 160-170। इसमें फायदा एक ये है कि जी इन्वेस्टर को जो इनकम प्रोजेक्टेड इनकम है वेयर द ऑथराइज्ड वैल्यूएशन टीम फ्रॉम द लेंडर इज प्रोजेक्टिंग, 80% ऑफ द इनकम कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द लेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक
अब
है जी।
देखिए, एनडीआईएस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को कह सकते हैं कि ये एथिकल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें आप एक तरह से दूसरों की सहायता भी कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट से। लेकिन वहीं क्या कोई खतरा ये भी है कि कभी ये बंद भी हो सकती है? स्कीम जो लागू की गई है इसमें तो कोई बदलाव नहीं आ सकता ना? सकता
बदलाव मतलब फर्दर अप्रूवल ऑफ द प्रॉपर्टीज मे बी कमिंग डाउन और दे मे स्टॉप इट कम्प्लीटली। इधर मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ ताकि आपको बेहतर आइडिया आ गया आने आएगा, जिसमें आप एनआरएसए और डिफेंस हाउसिंग, ये भी गवर्नमेंट स्कीम्स था पहले,
जी
तो ये जो एनआरएसए नेशनल रेंटल एग्रीमेंट स्कीम एक रहता था जो इन्वेस्टर बहुत इंटरेस्ट दिखाता था पहले, जिस अभी भी फिलहाल प्रॉपर्टीज है उस कैटेगरीज में, वेयर इट्स लाइक ए रेंटल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द पीपल अंडर द लो इनकम ब्रैकेट। तो उस हाउसेस में क्या होता था, इट्स लाइक 20% विल बी फंडेड बाय द टेनेंट एंड 80% ऑफ द रेंट इज बीन लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट एंड स्टिल दे आर प्रॉपर्टीज इन द एनआरएस स्कीम एंड एट द सेम टाइम इन द डिफेंस हाउसिंग, बट दे हैव स्टॉप टेकिंग न्यू प्रॉपर्टीज। सो इट्स नॉट दैट द गवर्नमेंट इज नॉट फंडिंग द एनआरएस और द डिफेंस हाउसिंग, बट दे स्टॉप टेकिंग न्यू प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर सिचुएशन आने का चांसेस है एनडीएस हाउसिंग में भी,
जी, तो
ताकि ताकि हर इन्वेस्टर को पैसा मिले इसमें।
तो इस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए उनकी क्या सलाह रहेगी? बात करते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद। हम बात कर रहे थे रियल एस्टेट से जुड़े वामसी रमाना के साथ में और जानकारी ले रहे हैं एनडीआईएस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी सलाह क्या रहेगी जिनको एनडीआईएस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मन हो, क्या सलाह रहेगी आपकी?
ये 100% एथिकल इन्वेस्टमेंट है जी, और इसमें एक बात है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ कम्युनिटी सर्विस एज वेल। बीइंग एन इन्वेस्टर आप इधर कम्युनिटी सर्विस भी कर रहे बट एज एन इन्वेस्टर ऑब्वियसली आप जो पैसा डाल रहे हैं उनका रिटर्न भी आपका एक्सपेक्टेशन है
जी।
तो इस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप देखा जाए तो मेन की फैक्टर इधर रहेगा लोकेशन के मुताबिक। जैसा हम देखता है मेलबर्न फॉर एग्जांपल और इवन पर्थ और एडिलाइड और इवन डार्विन साइड, देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज इन द एनडीआईएस कैटेगरीज, वेयर व्हेन आई से डार्विन साइड देयर आर मोर एनडीआईएस रिक्वायरमेंट्स बिकॉज ऑफ इवन अबोरिजिनल्स, यू नो देयर आर मेनी अबोरिजिनल्स एज वेल दैट साइड हु आर इन यू नो हैविंग दिस फंडिंग अप्रूव्ड, बट यस हु इज लुकिंग आफ्टर द प्रॉपर्टी इज अनदर की फैक्टर होता है जी अनिता जी इसमें, क्योंकि जैसा प्रोवाइडर है और प्रोवाइडर का कैपेबिलिटी कितना है, कितना पार्टिसिपेंट्स उन्हें लेकर आ सकते हैं और कितना पार्टिसिपेंट्स उनका बुक में है। तो अभी मार्केट में काफी सारे प्रोवाइडर्स है, जैसा नर्स होते हैं, नर्स वो खुद कर सकते हैं कि वो दे कैन बी अ प्रोवाइडर by completing their due diligence into that NDIS registration. अगर एक बार एक अभी काफी सारे nurses ऐसा शुरू किया कि ताकि already उनके पास participants है, वो लोग SDA houses के लिए देख रहे ताकि they can accommodate their participants in those houses. ठीक है जी। तो जो भी कंपनियां आप जा रहे तो देख लीजिए A to Z तक, मतलब फ्रॉम कंस्ट्रक्शन के लेके पार्टिसिपेंट्स को लुक आफ्टर करना, जिसमें वो ऑप्शन है वो बेहतर होगा जी, क्योंकि इट विल बी अ वन स्टॉप शॉप। हम ये भी देख चुका है जिसमें काफी सारे इन्वेस्टर्स लॉस भी हुआ है। आई वॉन्टेड टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस बिकॉज द कस्टमर्स विल टेक वेरी क्रूशियल डिसीजन हियर। अगर कंस्ट्रक्शन हो गया और उनका कंप्लेंस भी करना पड़ेगा जो जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन हाउसिंग लोग ऐसा है, बिल्डर्स अभी ऐसा है कि दे आर बिल्डिंग द प्रॉपर्टीज एंड दे आर नॉट गेटिंग द कंप्लेंस क्लियरेंस। सो एक बार करने के बाद व्हाट दे आर डूइंग, इन्वेस्टर को घर दे दे रहे जैसा रिक्वायरमेंट्स है, स्पेसिफिकेशन है वो दे दे रहे, बट लेकिन जब ऑडिट टीम आ रहे तो जो भी माइनर चेंजेस जो करना चाहिए ना उसमें, उसी के लिए वो बहुत काफी टाइम ले रहा है। 6 months 7 months भी हम देखा था जिसमें कंस्ट्रक्शन हो चुका था, वेयर बिल्डर हैज बिल्ट इट एंड हैंडेड ओवर टू द इंडिविजुअल एंड द इंडिविजुअल वेंट टू अनदर प्रोवाइडर एंड प्रोवाइडर
उनकी कंप्लायंस में नहीं आ रहा है,
नहीं आ रहा था, तो फिर इधर थ्री पार्टीज आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ा। उधर ही इन्वेस्टर को काफी सारे टाइम किल हो जाएगा और उसका रिटर्न्स में भी इफेक्ट पड़ेगा उसी
जी। तो लोकेशन और सर्विस प्रोवाइडर, ये दो मेन ध्यान में रखना चाहिए।
हाँ जी, और एक सलाह देना चाहते हैं हम, ट्रीट द पार्टिसिपेंट एज योर फैमिली मेंबर। समझ लीजिए आपका फैमिली मेंबर हु हैज अ फंडिंग एंड आपको जिधर रखना चाहते हैं आपका पार्ट, आपका फैमिली मेंबर को उसी टॉट प्रोसेस में देखिए ताकि आपको 100% चांसेस रहेगा पार्टिसिपेंट उस घर में आने का। क्योंकि मैं एक बात बता, जैसे पार्टिसिपेंट है इज लाइक एनी अदर, दे आर नॉट लाइक सम अदर पीपल, राइट, दे आर लाइक पीपल लाइक अस वेर दे वॉन्ट एमिनिटीज क्लोजर टू देयर यू नो हाउस। अगर एक बार पार्टिसिपेंट आपका घर में टिक गया एंड ही फील्स दैट इट्स माई होम, आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स अच्छा रहेगा और आप बार बार नया पार्टिसिपेंट्स को ढूंढने का जरूरत नहीं है। और एट द सेम टाइम इवन द पार्टिसिपेंट्स विल नॉट लीव द हाउस इफ इन केस यू गिव देम एन अकोमोडेशन वेयर यू फील दैट ये आपका खुद का घर है, अगर आप उसमें रहते हैं, और नहीं तो आपका घर वालों को आप उस घर में रख सकते। उसी आइडियोलॉजी पे देखिए, लाइक इफ इन केस सी व्हाट डिजेबल्ड पीपल और व्हाट old age people wants, they want a small recreation when they wake up, and even the carers or coordinators it will be easy for them to take over the property if they have the amenities in the surrounding of the house. So jaisa ek park hai, nahi to ek town center hai, nahi to ek library hai, theek hai ji, to taki every morning the carer bhi you know the participants ko leke ja sake easily where they don't have to hire another vehicle. Then it's a cost to the provider where they have to organize a vehicle. और अनिता जी, listeners को lending की तरफ से जानकारी रहना चाहिए इसमें। तो basically जो NDIS investments जो होता है जी, ये normal residential lending में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे customers काफी time लिया था जिसमें funding का approval भी delay हो गया था, ताकि वो land settle हो गया, जो loan approval के लिए it took another 6 months 7 months। कभी कभी ऐसा भी हुआ था, देवर अंडर द इम्प्रेशन नॉर्मल रेजिडेंशियल लेंडर के पास जाए लोन ले ले, बट एप्लीकेशन डालने के बाद दे रिजेक्टेड द एप्लीकेशन सेइंग दैट वी डू नॉट कंसीडर द एनडीआईएस हाउसेस। सो इन्वेस्टर को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कौन सा लेंडर के पास जाना है, वो पहले ही एक मॉर्गेज ब्रोकर से बात कीजिए
जी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में ध्यान रखना ही है, कंप्लायंस का ध्यान रखना है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, उनके कंप्लायंस क्या है, इसके बारे में भी ध्यान रखना है, और लेंडिंग की भी आपने बात की थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मन में वो कंपैशन होना चाहिए, वो कम्युनिटी फीलिंग होनी चाहिए, कि ये सोचना है कि ये बिल्कुल वही है जहां आपके घर का कोई इंसान रह सकता हो। तो इसीलिए इसको एथिकल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वंशी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें हमें समझाई हैं, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू अनिता जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू द लिसनर्स, थैंक यू अनिता जी।
SBS हिंदी के इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे और भी जानकारी भरे रोचक अंश सुनिए sbs.com.au/hindi पर। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।